Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Bhavana Bharara Shakti Padayos Tirarakti नचा विषय विरक्ति ही ध्यान योगी रसक्ति ही इति मनसि सदाहं चिंतयन् आद्यशक्ते रुचिर वचन पुष्पे ही अर्चनं संचिरोमि वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शांति शांति श्री शंकर भगवत पाद विरचिता दश श्लोकी न भूमिर् न तोयम् न तेजो न वायु न खम्नेन्द्रियम्
न तेषां समूहः
अरैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न वर्णा न वर्णा श्रमाचार धर्मा न मे
धारणाजा न योगादयोऽपि
अनात्माश्रयाहम् ममाध्यासहाना तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न साङ्ख्यम् न शैवम् न तत् पाञ्चरात्रम् न जैनम् न मीमांसकारेर्मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न चोर्ध्वम् न चादो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापरादि यद्व्यापकत्वादखण्डैकरूप तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपम् तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम्
प्रपञ्चः
स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुस्तदेको वशिष्ठ शिवः
केवलोऽहम्
न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्
Navishvo Navate Jatah Pragyako Va
Avidyapakatva
Trayanam Turiyas
Taveko Vasishta Shiva
Kevaloham
Api Vyapakatva Ditatva Prayoga Svatah Siddha Bhava Ananyasrayatva Jagatuchameta Samastam Tadanyat Tadeko Vasishta Shiva
Kevaloham
Nachaikam Tadanyat Dutiyam Kutasyat Navakevalatvam Nacha
Kevalatvam Nashunyam Nacha Shunyam
Advaitakatvat Katham Sarva Veda Siddham Bravimi Katham Sarva Vedanta Siddham
Bravimi
दश श्लोकी के आधार पर हम लोग आचार्य शंकर के द्वारा जो यह निर्मित है दश श्लोकी कल आचार्य जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और रोज ही इनको अर्पित कर रहे हैं। दश श्लोकी का पाठ हो गया, कल सब लोगों ने साधन पंचक का भी पाठ किया। विचार ये चल रहा है कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए यदि कोई साधन है, सबसे अच्छी चीज है, तो वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं माना गया। ये जो पाठ कर रहे हैं ना, सबका निषेध कब करेंगे, जब मालूम हो जाएगा ना पूरा, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, रोज पढ़ ही रहे। इसका अर्थ बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आदि का जो निषेध किया जा रहा है, जिस पांच भूतों से निर्मित यह जो शरीर है, कोई बोलते हैं भगवान की लीला समझ में नहीं आती, और लीला का मतलब ही है जो सबको लील जाए। लील ना जानते ना, लीन होना, निगल जाना, हाँ लील गया। भगवान कैसी लीला करते हैं, तो समय आने पर लीलते हैं और उसी को प्रकट करके उसके साथ खेलते हैं। हम लोग उसी में से आते हैं। कहाँ थे, छोटे से एक बूंद में एक शरीर का निर्माण हो जाता है, और इस समय सब खेल रहे, दुनिया में घूम रहे, प्रारब्ध भोग भोग रहे। ये भगवान की लीला नहीं है तो और क्या है। और ये बात हमें बताते हैं गुरु। गुरु का जो अर्थ बता दिया, गृह निगरणे और गृह शब्दे, जो उपदेश दे और हमारे त्रुटि को निगल जाए, हमारे दोषों को दूर कर दे, जीवात्मा का जो भाव धारण कर रखा है उसको निवृत्त करके परमात्मा स्वरूप में जो स्थित करा दें, ऐसे को बोलते हैं गुरु। अब कल तो आचार्य जी की जयंती थी, इसलिए दूसरे विषय में चले गए थे थोड़ा। जब शरीर में अभिमान होता है, किसी को बोले कि तुम बड़े अभिमानी हो, तो वहां पर अभिमानी का मतलब होता है कि दूसरे से मान पाने की इच्छा। कोई हमें माने तो वहां अभिमानी अहंकारी का प्रयोग होता है। वेदांत में जब कहा जाएगा कि देहाभिमान का परित्याग करो, शरीर वाला मानना ही तो सबसे बड़ा अभिमान है। पहले तो अभिमान होता है कि जैसे ऐन्द्रियिक मानसिक बौद्धिक इंद्रियों को लेकर के, शरीर को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, मन को लेकर के, हमें पता नहीं चलता, दिन रात बोलते तो रहते ही मैं मनुष्य हूं। मनुष्य में फिर क्या है, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ऐसा जो भान होता है। जिस परमात्मा ने पांच भूतों को प्रकट करके और अपने आप को जिसमें छिपा दिया, वहां से फिर उसको प्रकट करना है। इसलिए जो भी उपाय बताया जाता है ना, जो पांच भूत की प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया, जितने भी ज्ञान के चर्चा होती है, सब के सब प्रयोजन के अनुसार बनाया है। इसमें सच्चाई क्या है, जैसे जगत को भी कई बार सत्य बोला जाता है, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्य के द्वारा बनाया हुआ ये भी क्या है, सत्य है। लेकिन इसकी सच्चाई तभी तक है जब तक उस सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, इसे उसका नाम रखा परम सत्य। सामान्य सत्य तो सब चल रहा है व्यवहार में, हाँ ये बड़ा आदमी सच्चा आदमी है, ये सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, ये सब सापेक्ष सत्य है। लेकिन निरपेक्ष सत्य को ही परम सत्य कहा जाता है, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। प्राप्ति भी क्या करनी है, जिसको अप्राप्ति सी लग रही है उसी को प्राप्ति भी करनी है, मोक्ष भी उसी को प्राप्त होता है। जैसे एक मंत्र आता है ना उसमें मुंडकोपनिषद में, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताहा परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, और उससे पहले जो आता है उसी मंत्र में तद विज्ञानार्थम, तद ज्ञानार्थम नहीं, तद विज्ञानार्थम, जो इसका अनुभव किया होगा वही आपको इसकी अनुभूति का उपाय बताएगा। ज्ञानार्थम नहीं जाना है, यहां जो अभी सब आए हुए ना, ये ज्ञानार्थम ही है। विज्ञान के लिए तो थोड़ा आपको अलग से, जो ये देहाध्यास आदि का जो स्वभाव बना है ना, इसको छोड़ना है, ये बहुत कठिन है। हो सके तो थोड़ी देर लाइट पंखा सब बंद करके बैठो, और शरीर से जब पसीना छूटे उस समय देखो कि शरीर का क्या स्वभाव है, और उस पसीने में फिर देखो सुगंधी आ रही कि दुर्गंधी आ रही है। बाहर से परफ्यूम से दबा देते हैं हम लोग, हर चीज को दबा दबा के कोशिश करते रहते दिखाई ना दे। भगवान ने इसलिए बढ़िया बनाया ना शरीर को, जो तो विचार करना पड़ेगा कि जरा से चमड़ी उधेड़ो, मांस दिखता है, और उस पर यदि मक्खी भिनभिनाए तो ढकना पड़ता है। कोई भोजन के समय कहेगा देखो मेरा फोड़ा कितना अच्छा है, अपने ही फोड़े को हम स्वयं भी ढकते, स्वयं को घृणा होती है। तो विचार करने पर मालूम पड़ता है कि इसमें है कुछ भी नहीं, फिर भी हम करते क्या है, इसको बढ़िया ढक ढुक के रखते हैं, और कहीं बाहर गंदगी दिखी तो नाक बंद करो, मुंह बंद करो, आंख बंद करो, भागो। तो ये जो यहां बनाया हुआ है ना, ये उधर इसके ऊपर भी ये बढ़िया कवर है, नहीं तो खाते समय देखता दाल किधर गई, रोटी कहां पर है, चावल कहां पर है, कितना हो गया, भरा कि नहीं भरा, कुछ भी नहीं दिखता है। यहीं से सब जवाब मिलता है, डालो मत डालो, हो गया अभी नहीं हुआ। ऐसी विलक्षण चीजों को देखते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर आया है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतक कृतेना तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये दो मंत्रों का बड़ा संबंध है, तद विज्ञानार्थम और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। ये है निर्वेद माया, निर्वेदम आयात। वैराग्य जो है ना, हम लोगों को करना पड़ता है, वैराग्य स्वभाव नहीं है, राग द्वेष आदि स्वाभाविक रूप से वैराग्य के लिए प्रयास करना पड़ता है। कोई बोले कि वैराग्य अपने आप हो जाएगा, ये कभी होने वाला नहीं, बल्कि वैराग्य होता है, दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में पुनः वह राग से आवृत हो जाता है। ये भी पुरुषार्थ के अंतर्गत माना गया। इसके लिए पहले अपने शरीर से ही प्रारंभ करो, यहीं पर आत्मा की उपलब्धि भी है, बाहर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, कितना सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अब जो इसको मिथ्या आत्मा बोलते हैं, इस शरीर की अपेक्षा से फिर हम परिवार, देश, समाज सबको जोड़ते हैं। शरीर ही छूटने वाला हो, बड़े उत्साह पूर्वक हर काम कर रहे हैं, शरीर में कुछ पीड़ा हुई, चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा बस मामला गड़बड़ है। कई बार तो लोग करवाते नहीं, डर के मारे कि नहीं पता लगे तो अच्छा है, और कुछ लोग चाहते नहीं पता लगे तो कुछ ट्रीटमेंट ले, पहले से सावधान हो जाए। कितने भी सावधान हो जाओ, कितने भी आप चेकअप करवा लो, आज चेकअप करवाया कुछ नहीं निकला और कल से शुरू हो गया, कल से शुरू हुआ। हम तो सोच रहे कल तो करा लिया, अभी 5-6 महीना साल भर जरूरत नहीं है, और वो जो साल भर में उसको पूरा मौका मिल गया फैलने का। अब जब दोबारा चेकअप करवाया तो बोले मामला गड़बड़ है, बोले पिछले साल कराया था तब तो कुछ नहीं आया था, जिस दिन नहीं आया था उसके दूसरे दिन से शुरू हुआ था, करेंगे क्या? या तो फिर रोज टेस्ट कराते, रोज चेकअप करवाओ, ये भी नहीं हो सकता है। रोज ब्लड निकालते चले जाए तो लगता है यार पूरा खून निकाल लेगा टेस्ट करने के लिए, तो मेरे अंदर रहेगा क्या? तो उसके लिए बोलते 3 महीने में कराओ, 6 महीने में कराओ, साल भर में कराओ। कोई भी नहीं चाहता कि मैं मरूं, मैं बीमार हूं, सब चाहते कि बस ऐसे ही रहे, लेकिन भगवान की लीला विचित्र है, बनाते भी है, मिटाते भी है। ऐसे जो ये स्थूल शरीर है जो दिख रहा है 5 भूतों का कार्य, इसकी निवृत्ति कब होगी? इसको बोलते हैं इसे मिथ्या आत्मा। शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है इसको बोलते हैं मिथ्या आत्मा, और इसकी निवृत्ति होगी आत्मज्ञान से। मिथ्या आत्मा से संबंधित जितने पदार्थ हैं उसमें जो आत्मत्व बुद्धि होती है उसको बोलते हैं गौण आत्मा। गौण शब्द का प्रयोग वहीं पर किया जाता है किसी दूसरे के गुण का जिसमें आरोपण हो, जो चीज उसमें हो नहीं लेकिन कुछ प्रशंसा के लिए बता दिया जाए, निंदा में भी हो सकता है अर्थवाद रूप में, गुणों के आधार पर जो वर्णन किया जाए, चाहे वो अवगुण हो चाहे सद्गुण हो, गुण तो गुण है, इसे उसको बोलते गौण। यह बालक शेर है, सिंहो माणव का ऐसा दृष्टांत आता है, ये बच्चा बड़ा शेर है। अब शेर तो खूंखार प्राणी होता है, बच्चा क्या खूंखार है? तो शेर के अंदर और भी शूरता, वीरता, निडरपना, किसी से नहीं डरना, ऐसा तो जब कोई बच्चा कुछ करता है बोले अरे शेर का बच्चा है, है तो किसी आदमी का बच्चा लेकिन कहा जाता है शेर का बच्चा, शेर जैसा है, ये सब गौण प्रयोग होता है। अरे महाराज जब ये बोलता है ना इसके मुंह से आग निकलती है, अब आग उगलता है तो उससे चूल्हा पर जला लू, भोजन पका लू, हो नहीं सकता है, लेकिन आग जैसे जलाने का काम करती है वैसे इसके वाणी से किसी के हृदय में पीड़ा होती, जलाता है, इसलिए आग का प्रयोग कर देते, अथवा छुरी की तरह बोलता है, क्या उसे सब्जी काटोगे, ये तो हो नहीं सकता, ये सब गौण प्रयोग है। ममात्मा भद्र से रहा, ममात्मा देवदत्त, यह जो देवदत्त है मेरी ही आत्मा है। बेटा जब तू खाता है ना, बस मैं सोचता हूं मेरा पेट भर गया। अब बेटा बोल दे ठीक है पिताजी आप रोज खाने का झंझट मत करो, आपकी जगह मैं ही खा लिया करूंगा। ऐसे सुस्पष्ट जो दिखाई देवे कि अपनी आत्मा कभी हो नहीं सकती, ऐसे भिन्न वस्तुओं में जो आत्मत्व बुद्धि होवे इसी को बोलते हैं गौड़ आत्मा। पंचदशी में इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन हुआ है। सबसे पहले हम लोग अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं, बाद में बाकी चीजों को देखते हैं। शरीर में भी पहले तो पूरे शरीर से प्रेम होता है, फिर जब किसी अंग में तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, तो उसको भी हम छोड़ने को तैयार हैं, निकलवाने को तैयार हैं। डायबिटीज है, हाथ में घाव हो गया, फैलता जा रहा है, डॉक्टर कहेंगे कि एक हाथ निकाल देंगे तो फिर आप ठीक हो जाओगे, जल्दी से निकालो। वहां पर शरीर को हम इतना मानते हैं तो हाथ को निकलवाने के भी तैयार हो जाते हैं, और अपने ही धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है, बोले पैसा। उसका उदाहरण दिया यहां पर, ये शायद और भी जगह आता है, वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम् इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणात् आत्मा परः प्रियः। वित्तात् पुत्रः, धन को तो हम बहुत मानते हैं, चाहिए, लेकिन बेटा यदि बीमार हो जाए तो वहां बोलते भाई जो भी लग जाए, डॉक्टर साहब जितने भी फीस लगे, जो भी आपको चाहिए, बेटा मेरा ठीक हो जाना चाहिए। वहां पर धन की अपेक्षा पुत्र प्रिय है, पहले धन प्रिय था, अब पुत्र प्रिय है, धन जो है गौण हो गया। पुत्राद पिंड, पुत्र की अपेक्षा अपना शरीर प्रिय है। तथेन्द्रियम, शरीर में भी इंद्रिय प्रिय है। इंद्रियेभ्य प्रिय प्राण, इंद्रियों की अपेक्षा प्राण प्रिय है, और प्राण आत्मा प्रिय पर, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, आत्मा। और यही बात उस दिन कह दिया था ना, जब याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि अरे मैत्रेयी गार्गी, जो हमारे पास है सोचते हैं तुम दोनों में बंटवारा कर दे। उस समय जो जवाब दिया है याज्ञवल्क्य जी को कि अनंत वित्तो ही भवान अंतवत दीयते कथम, अनंत वित्तो ही भवान, आप उस अनंत धन को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका कभी अंत नहीं होता, उसका नाम है अनंत धन। हम लोग को किस धन में लगे हैं, अंत होने वाला धन। ये सब केवल इसी शरीर की अपेक्षा से आवश्यकता है इसके, ना तो यहां से कोई ले जा पाता है, कितने भी आप घर में छोड़ जाओ, कोई भी चिता में घर के संपत्ति नहीं डालते, यहां तक कि शरीर के ऊपर जो कपड़ा है तो उसको भी उतार देते हैं, एक कफन डाल देते, बोले जाओ हो गया। सबके साथ यही हाल हो रहा है, हमने अपने पहले वाले का हाल किया तो हमारा भी वही हाल होगा, और जो करेंगे उनका भी यही हाल होना है, संसार का स्वरूप है ऐसा। अब यह है कि रोज कथा सुनते आप लोग, सत्संग करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, सुनी सुनाई बात है, अनुभव है, संस्कार है। जो कभी इन चीजों को सामना नहीं करना चाहते, उनके लिए तो लगता है कोई नया काम हो गया, इसलिए पहले से अपने आप को ऐसा मान लो कि माटी कहे कुम्हार से हाड़ जरे जस लाकड़ी, घास केस जरे जस घास, लकड़ी जैसे जलती है ऐसे शरीर जलता है। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, सब जग जरता देख के भया कबीर उदास। सारा संसार ही जल रहा है, जरना मतलब जलना। हाड़ जरे जस लाकड़ी, बस पूरा भस्म सात हो जाता है, बाद में उसमें से चुन चुन करके निकालते, जिसका नाम रखा फूल, अस्थि ले जाते हरिद्वार में, गंगा जी में डालते हैं, अस्थि विसर्जन किया। भारत के प्रधानमंत्री भूतपूर्व ब्रह्मलीन हो चुकी इंदिरा गांधी, और अस्थियां ले जाकर के मुक्तिनाथ के पास एक कागबेणी नाम की जगह है, वहां भी पिंडदान करने की प्रथा है, पितरों के निमित्त गया, मातृ श्राद्ध आपके सिद्धपुर, वहां जाते हैं, अलग अलग स्थान है। इस हड्डी का इतना संबंध है, जिसका गंगा जी के साथ स्पर्श हो जाए तो बोले उसकी सदगति हो जाती है। इसलिए जीते जी बार बार गंगा जी में हड्डी को डुबाओ तो ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद क्या है, गंगा जी में कचरे ही डालते और क्या है। नहा लिया नहीं, यहां मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति गंगा नहाए बिना नहीं होगा, सबने नहा लिया है। वाह, फिर तो हो गया, आप धन्य हो, बड़े भाग्यशाली हैं। गंगा जी में स्नान करने का मतलब ये भी है, जबकि गंगा जी गोमुख से प्रारंभ होती है और इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम होता है और आगे जाकर के फिर नाम पड़ता है गंगा सागर, यमुना सागर नाम नहीं पड़ता। और यमुना जी जो है यमराज की बहन है और भगवान कृष्ण की पत्नी है। गंगा जी जब आई बड़ी तेजी से, तो यमुना जी को जब पता चला तो यमुना जी हो गई बड़ी बहन, क्योंकि हिमालय की पुत्री यमुना भी है और हिमालय की पुत्री गंगा जी भी है। तो बड़ी बहन ने सोचा छोटी बहन का स्वागत करूं। स्वागत करने के लिए खड़ी थी तो गंगा जी जैसे देखा यमुना जी सामने खड़ी है, मुंह मोड़ लिया। यमुना जी ने पूछा क्या हुआ, बोले तुम्हारे साथ यदि मैं मिल जाऊंगी तो मेरा नाम रूप कहां रहेगा। तो यमुना जी बोलती चिंता मत करो, मैं तो कृष्ण की पत्नी बन चुकी हूं, अब मैं कभी समुद्र की पत्नी बनने वाली नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं मिल जाती हूं और तुम्हारा नाम रूप बना रहेगा। तो देखो यमुना जी ने कितना बड़ा त्याग किया। बड़े छोटे के लिए त्याग कर देते, लेकिन छोटे जो है, माता पिता देखो हमेशा अपने संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये जब हो जाते हैं बड़े, खास करके कोई कौन बता रहा था विवाह के टाइम में आप लोगों के यहां प्रथा है कि नहीं, जब बेटा जाने लगता है शादी करने के लिए तो बोलते मां उस समय अंतिम बार दूध पिलाती है, बोले आज के बाद मेरे दूध से तुम्हारा संबंध खत्म हो गया, अब दूसरी माता जी आने वाली है ना, अब तो वही होगा और क्या। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकरम। श्याल को बुद्धिदायक ये सब हो जाता है, साले सलाहकार होंगे और पत्नी जो होगी वो क्या तरुणी प्रभुता गे है। लोग बोलते बहुमत, कौन सा मत चलता है फिर, जहां बहुओं का मत चले उसको बोलते हैं बहुमत।